मूला पुस्तक नववी लेक्चर नंबर 13।
ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणम्। नमो सिद्धानम्। नमो आयरियाणम्। नमो वज्जायाणम्। नमो लोये सवसाऊनम्। जभागमेतो विजत्थ दोषसंभवो नर्थि कम्पणमियजिननाम्
श्री भीमसेन आचार्य रचित जयदेवला टीका है। वो कषाय पावर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतीश्व आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। नवी पुस्तक, यहाँ भी बंधक नाम का अर्थाधिकार चल रहा है, उसमें अनुभाग का संक्रमण देखते हुए अभी हम पृष्ठ संख्या 99 पर आ गए। 99। यहाँ भुजगार की बात अभी कल से शुरू हुई थी, यानी भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्य, जो उसके जो संक्रमण है उसकी बात यहाँ चलेगी। तो हमने कल 97 पर देखा था मिथ्यात्व का, ये मिथ्वा हुआ है, मिथ्या करो सूत्र में जहां से शुरुआत होती है ना, 340 के ऊपर मिथ्वा लिखा है ना, मिथ्या करो, मिथ्या हुआ है ना, रिपीट देख रहे हैं। मिथ्या तो का भुजगार संक्रामक कौन है, तो कहते मिथ्या दृष्टि होता है, क्योंकि बढ़कर किसके होगा, जो बढ़कर बंधेगा एक अवली के बाद उसका बढ़कर संक्रामक होगा। अल्पतर का और अवस्थित का कौन होता है,
कोई भी जीव होता है,
तो कोई भी जीव होता है, यानी मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, समय दृष्टि भी हो सकता है। मिथ्या तो में अवक्तव्य संक्रामक नहीं है। अब कहा था ऐसा ही अन्य में समझो, सम्यक तो सम्यक प्रकृति की बात कुछ अलग है। सम्यक तो सम्यक मिथ्या तो में क्या बात अलग है, कि उसका अवक्तव्य संक्रामक होता है, परंतु भुजगार नहीं होता। वो तभी हमने पढ़ना है, अभी हमको उसको पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था ना मिथ्या दृष्टि, जब से सत्ता हुई है तो उत्कृष्ट संक्रमण चलेगा, उत्कृष्ट अनुभाग है उसका, और जब जाके दर्शन मुनि की क्षपना होती तब जाके अनुत्कृष्ट होता है, फिर जगन्य होकर वो नष्ट हो जाता है, यानी है उससे बढ़ने का कभी चांस ही नहीं है, क्योंकि उद्वेलना में भी उत्कृष्ट था और समय को प्राप्त करने पर भी उतना ही उत्कृष्ट ही रहा, परंतु उसमें अवक्तव्य होता है, क्योंकि जिसकी सत्ता नहीं है उसकी सत्ता हो जाती है, तो अनुभाग का संक्रमण नहीं था और शुरू हुआ, या अवलिप में प्रवेश कर चुका तो सत्ता होते हुए भी अनुभाग का संक्रमण नहीं था, और फिर औक्षमिक समय तो प्राप्त करेगा तो दूसरे समय से संक्रामक होगा। क्योंकि हमने ये भी बात देखी थी ना कि सम्यक्त्व और सम्यक् मिथ्यात्व को छोड़कर शेष कर्मों का स्वामित्व ऐसा ही समझना है ने, क्या समझना, भुजगार किसको होते हैं तो मिथ्या दृष्टि के होते हैं, अल्पत्र अवस्थित किसके होते हैं तो दोनों को होते हैं, और फिर अवक्तव्य नहीं होता ऐसा लिखा था मिथ्यात्व में, अन्य प्रकृतियों में होता है, अन्य प्रकृतियों ने किसको, आनंदानुबंधी में विसंयोजना के बाद संयोजना में होता है, और 12 कषाय, 9 कषाय में उपशम श्रेणी से उतरते समय होता है। सम्यक सम्यक् मिथ्यात्व के जब 26 की सत्ता वाला उपशम सम्यक् को प्राप्त करेगा और संक्रमण शुरू होगा तो कहेंगे उसका अवक्तव्य होगा, यह डिफरेंस हमने देखा था। अब यहाँ हम 99 पृष्ठ पर आए हैं। सूत्र पहले पढ़ते हैं। सम्मत सम्मामिच्छत्तानं भुजगार संक्रामौ नत्थी। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का भुजगार संक्रामक कोई नहीं है, क्योंकि उनका अनुभाग वृद्धि से रहित होने के कारण ब्रू हुआ है, ब्रू करना अवस्थित है। अवस्थित है ना, उतना का उतना रहता है, मिथ्यात्व में हो या सम्यकों में। दर्शन मुंह की जब तक सपना नहीं है तब तक वो उसका उत्कृष्ट रूप से अवस्थित ही रहता है, बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं उसमें। यानी भुजगार होता ही नहीं है तो अल्पतर और अवस्थित तो होगे। तो अपदर अवत्तव संकामगो को होई, तो कौन है वो जीव? स्वामित्व उसका पूछ रहे हैं। अल्पतर और अवक्तव्य संक्रामक कौन होता है? यह सूत्र सुगम होता है, सुगम है। तो कहते सम्माइठी अन्नदरो, अन्यतर सम्यक दृष्टि होता है। सम्यक दृष्टि कहना क्यों? क्योंकि मिथ्या दृष्टि के सम्यक मिथ्यात्व, सॉरी सम्यकतर सम्यक मिथ्यात्व का अल्पतर होगा ही नहीं। अवस्थित तो होगा, अल्पतर नहीं होगा और ना ही अवक्तव्य होगा। अवक्तव्य कब होता है? सम्यक तो प्राप्त होने पर दूसरे समय में। पहले समय में तो प्रकृति तैयार हुई औक्षणिक सम्यक्त्व के काल में, और दूसरे समय से संक्रमण शुरू हुआ, तो वो भी सम्यक दृष्टि अवक्तव्य के लिए। और अल्पतर वो तो दर्शन मोहनि की सपना में शुरू हो जाता है। अल्पतर उत्कृष्ट रूप से था, फिर वो अनुत्कृष्ट होगा और घटते चला जाएगा। यहाँ पर सम्यक दृष्टि पद के निर्देश का फल मिथ्या दृष्टि का निषेध करना है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को प्रकृत विषय का स्वामी होने में विरोध आता है। अन्यतर पद के निर्देश का फल अवगाहना आदि विशेषों का निराकरण करना है। अन्यतर ने कोई भी सम्यक दृष्टि, इसका अर्थ ऐसा नहीं कि दर्शन मुखी सपना बिना वाला कोई सम्यक दृष्टि, अन्य कोई अवगाहना आदि अन्य जो कोई विशेषताएं हैं उसमें कोई अंतर होगा तो उससे कुछ लेना देना नहीं। अवगाहना में अंतर हो सकता है, लेशा में अंतर होगा कि नहीं होगा?
होगा ना।
कौन सी लेशा होगी?
चौथे
शायद सम्यक दृष्टि में
नहीं, नहीं अल्पतर में नहीं, अवस्थित
अल्पतर। अल्पतर की बात चल रही है ना,
शुभ लेशा होगी,
शुभ लेशा, क्योंकि सपना का कार्य शुभ लेशा में होगा, परंतु वो पीत भी हो सकती है, पद्म भी हो सकती है, शुक्ल भी हो सकती। अन्य भी जो कोई जो यथा योग्य कषाय का उदय है, अभी चौथे से सातवें तक कहीं भी सपना का कार्य होगा, तो कभी अभी अपनी अपनी जो कोई कषाय चौकड़ी का उदय है तो क्रोध का हो सकता है, मान का, माया का, लोभ का, उसमें तो कोई ऐसा अंतर नहीं है, इसलिए अन्यतर शब्द डाला। दर्शन मोनी की सपना, हाँ दर्शन मोनी की सपना शुरू होते ही अपूर्वकरण शुरू होता है तो अनुभाग कांडक शुरू होते हैं। पहले अनंतानुबंधी की विसर्जना के काल में सम्यक तो सम्यक नहीं, नहीं लेशा नहीं, सम्यक सम्यक मिथ्यात्व के अनुभाग में कोई परिवर्तन नहीं होता। स्थिति तो उसकी घट सकती है परंतु अनुभाग उतना ही रहेगा। इसलिए अनादि मिथ्या दृष्टि या 26 प्रकृतियों की सत्ता वाला सादि मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक्त को उत्पन्न करके दूसरे समय में अवक्तव्य संक्रामक का संक्रम का स्वामी होता है, क्योंकि पहले समय में तो उसकी सत्ता हुई है और दूसरे समय से संक्रमण होगा। तथा अल्पतर संक्रामक दर्शन मुनि का क्षपक होता है, क्योंकि अन्यत्र अल्पतर पद नहीं पाया जाता, एकमात्र दर्शन होने के क्षपक में ही अल्पतर पद पाया जाता है। अवस्थित संक्रामक को होई, अवस्थित पद का संक्रामक कौन होता है? कौन होगा? मिथ्या दृष्टि के समय दोनों होंगे, क्योंकि वो थ्रू आउट उसके जब उत्कृष्ट उत्कृष्ट ही रहता है, यानी वो अवस्थित ही रहता है। यह सूत्र सुगम है। उसके उत्तर में कहते हैं अन्नदरो, अन्यतर जीव होता है। मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि कोई भी जीव स्वामी है, यह उक्त सूत्र का तात्पर्य है। इस प्रकार ओघ से स्वामित्व समाप्त हुआ। मनुष्य त्रिक में इसी प्रकार जानना चाहिए, इतनी विशेषता है, इनमें 12 कषाय और 9 कषायों के अवक्तव्य संक्रम का स्वामी कौन है? सर्वोपशमना से गिरने वाला अन्यतर जीव स्वामी है। तो ओघ में क्या होगा डिफरेंस? ओघ में तो दोनों ही हो गए। ओघ की अपेक्षा मरकर देव में जाने वाले को भी वहां लेंगे।
वहां पे देव में अवक्तव्य ले सकते हैं क्योंकि वहां देव में उत्पन्न होगा। और
हाँ, यहाँ कोई मार्गणा की बात नहीं है।
अच्छा,
ओघ के अर्थ, ओघ का अर्थ क्या है?
सभी मार्ग
गति का डिफरेंस किए बिना सामान्य से यदि हम मनुष्य त्रिक कहते हैं तो मरकर की बात नहीं हो सकती। वहां तो गिरने वाला ले लेंगे। शेष मार्गणाओं में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है। विशेषार्थ, ओघ प्ररूपणा में 12 कषाय और 9 कषायों के अवक्तव्य पद का संक्रामक जो सर्वोपशमना से गिरते समय विवक्षित प्रकृतियों के संक्रम स्थल के आने के पूर्व, क्योंकि जिस क्रम से उसके जो उपशमना हुई है उसके उल्टे क्रम से उसके उपशमना मिट जाएगी, यानी संक्रमण शुरू हो जाएगा। तो जहां जहां जिस प्रकृति का संक्रमण शुरू होता है उसके पहले ही अगर मरकर देव हो जाता है, वह भी होता है। ओघ की अपेक्षा अवक्तव्य भंग में मरकर देव होने वाले को भी लिया, परंतु मार्गणा में मनुष्य त्रिक की जब बात करेंगे तो मरकर देव होने वाले ही जीव को वहां कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि मार्गणा बदल जाती है। तो उसमें क्या रखना? उपशम श्रेणी से गिरकर नीचे आया है, संक्रमण शुरू हुआ तो उसका अवक्तव्य चालू होगा। ऐसा दर्शन मोहिनी में नहीं होता। दर्शन मोहिनी में जो मिथ्यात्व का हो या समय मिथ्यात्व का जो है अनुभाग, वो कभी असंक्रामक नहीं होता। असंक्रामक होगा जब क्षपणा हो जाएगी।
ये तो ये देव की बात जो लिए, विवक्षित प्रकृतियों के संक्रम स्थल के आने के पूर्व मर कर देव हो जाता है। तो 11वें में मर गया तो सभी का उपशमना खत्म हो जाएगा ना?
हाँ, 11वें में मरे या अपने संक्रमण शुरू होने के एक समय पहले मरे तो भी वही
तो
बात होगी। 11वें मरे तो कोई बात ही नहीं है, परंतु उतरते समय जहाँ जिस प्रकृतियों का संक्रमण शुरू हो जाता है उसके पहले पहले मरकर देव में जाएगा, उसकी बात। हाँ देखो, मनुष्य त्रिक में इस प्रकार से प्राप्त हुआ स्वामित्व संभव नहीं है, इतनी ही यहाँ पर ओघ प्ररूपणा से विशेषता जाननी चाहिए। विशेषता ने डिफरेंस, इनमें शेष सब कथन ओघ प्ररूपणा के समान है, यह स्पष्ट ही है। मनुष्य त्रिक को छोड़कर नरक गति, तिर्यंच गति और देव गति तथा उनके अवांतर भेदों में, यानी तीनों गतियों के अवांतर भेदों में अनुभाग विभक्ति के समान भंग बन जाने से उसे अनुभाग विभक्ति के समान जानने की सूचना की है, तथा इसी प्रकार अन्य मार्गणाओं में भी अनुभाग विभक्ति के समान जानने की सूचना की है। इसमें कोई डिफरेंस तो नहीं होगा क्योंकि हमने देखा ना, जिसमें वो क्षपणा वगैरह होती है उसकी अपेक्षा से अवक्तव्य होगा। थोड़ा यहाँ देख लेते हैं, अनुभाग विभक्ति में भुजगार, वृद्धि मिला मुझे ये किसका भुजगारे अंतरम, भुजगारे भुजगार कालो, भुजगार
अंतर
270-275 स्वामित्व दिया है भुजगार का। हमें नारकियों में देखा है ना, देखो 275 पर आदेश से मिला। आप बैठना इनके साथ तुम। हाँ, आदेश से नारकियों में 27 प्रकृतियों का ओक के समान बन गए। सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित और अवक्तव्य विभक्ति का भंग ओक के समान है, यानी सम्यक मिथ्यात्व में अल्पतर नहीं है। सम्यक में अल्पतर होगा नारकियों में भी, कैसे? कृतकृत्य वेदक में अनुभाग कांड घात करते करते आया है, तो अंत में भी उसके प्रति समय अनुभाग अनुसमय अपवर्तन, तो भी वहां उसको अल्पतर पाया जाएगा, समय मिथ्यात्व में नहीं होगा। इसलिए 27 प्रकृतियों की बात की मैंने, ऐसा कहा अनुसमय अपवर्तन, अनुसमयापवर्तन, अपवर्तन यानी घटना, अनुसमय ने प्रति समय, अनुभाग प्रति समय अनंत गुना घट जाना बिना कांडक के, क्योंकि कांडक घात होता है तब अंतिम समय तो अनुभाग घटता है, परंतु यहाँ कांडक नहीं है फिर भी प्रति समय अनुभाग अनंत गुना घटता है। ये कब होता है? सभी कांडक रुक गए सम्यक प्रकृति के, अंतर्मूर्त काल शेष रहा है, कृतकृत्य वेदक हो गया है, अब प्रति समय उसका अनुभाग घटेगा। इसलिए 27 प्रकृतियों को तो ओघ के समान कह दिया नारकियों में भी, और सम्यक मिथ्यात्व की बात है यहाँ पर, सम्यक मिथ्यात्व में अल्प तरह होगा ही नहीं
नारकियों में,
वहां के सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो अवस्थित रहेगा और अवक्तव्य भी रहेगा, क्योंकि वहां भी अनादि मिथ्या दृष्टि हो गए, या 26 की सत्ता वाले साधी भी हो गए, उनके लिए तो अवक्तव्य भंग है उसके लिए। ख्याल में डिफरेंस कहाँ है? सम्यक मिथ्यात्व का अल्पतर नहीं होगा नारकियों में, मनुष्यों में होगा। कहाँ पर? प्रति समय उसको अनुभाग कांडक नहीं कहते, क्योंकि अनेक स्पर्धकों में से घटना उसको अनुभाग कांडक कहेंगे। सभी स्पर्धकों का अनुभाग घटना, हाँ
नाश होना वही घटना होगा,
हाँ नाश होना, उसके जो अधिक अनुभाग है वो मिट जाना, उसी का अनुभाग कम हो जाना। हर एक जो जो स्पर्धक है अपने पूर्व अनुभाग से उस सभी का अनुभाग घटता है। होने दो ना, ऐसा ही है वहाँ पर भी। कहाँ पर?
हाँ
निषेक गिरने दो, फिर कर नाश होने की बात नहीं है यहाँ पर। सभी निषेकों में जितने स्पर्धक है उत्कृष्ट स्पर्धक का अनुभाग घटकर अनंतवा हो जाएगा, और अपने अपने जो पूर्व अनुभाग है उससे उससे कम अनुभाग होता चला जाएगा। सभी स्पर्धकों में सभी का अनुभाग घटेगा, पूर्व से पूर्व में जितना था उसका अनंतवा भाग हो जाएगा सभी स्पर्धकों में। फिर भी हम उत्कृष्ट स्पर्धक की बात करते हैं ना, वो घट गया तो हम कहेंगे ये घट गया। हाँ केवल वो यहाँ तो उदय की अपेक्षा है ही नहीं ना, वो तो नीचे को कहीं भी पड़े हो अनुभाग, स्पर्धक कहीं पर भी जो है उसका अनुभाग घट रहा है। उदयावली की बात नहीं, सभी की बात है, क्योंकि यहाँ तो एक एक निश्चय खिर रहा है, और यहाँ तो उदयावली में नहीं घटता ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आवली प्लस एक समय तक, आवली प्लस एक समय तक संक्रमण है, उसके बाद भी वो घटकर ही उदय में आ रहा है। अनुभाग विभक्ति में तो अंतिम समय लिया कृतकृत्य का, और अनुभाग संक्रम में जगन्य के लिए आवली प्लस एक समय लिया। जब आवली में प्रवेश कर चुके हैं तो अनुभाग का भी संक्रमण डूब जाएगा, तो एक एक समय वाला होता है उसको संक्रमण में नहीं लिया, जैसे हमने प्रकृति संक्रमण में भी देखा था, एक एक समय का जो स्थूप संक्रमण होता है उसको कंसीडर नहीं किया, उसको संक्रमण में नहीं गिनते।
तो यहाँ पे हम लोग जो दसवें गुणस्थान में सूक्ष्म लोक का उदय देखते हैं, वहाँ पे संक्रमण है कि नहीं है? क्योंकि वहाँ पे सूक्ष्म
संक्रमण आवली प्लस एक समय के लिए
है वहाँ पे, पर वहाँ पे कृष्टि की रक्षा तो नौवे गुणस्थान में कम्प्लीट हो गई।
हाँ, सूक्ष्म कृष्टि की, सूक्ष्म कृष्टि हुई, पहले बादर कृष्टि थी, सूक्ष्म कृष्टि हुई।
कृष्टि में भी प्रति समय अनु
प्रति समय तो बाद में हो जाता है, प्रति वहाँ भी अनु
क्योंकि वहाँ पे हमने देखा
तो
एक, एक एक कृष्टि में जब जो उदय रूप निशे के उसमें अनंत में भाग समान अनंत भाग
समान चलता है, क्योंकि वहाँ विशुद्धि इतनी बढ़ रही है, अनंत गुणा अनंत गुणा, तो अनुभाग भी अनंत भाग हो रहा है।
तो कृष्टि की रचना हुई उसमें वापस ये
उसमें भी होगा, कृष्टि में भी चलेगा, क्योंकि तभी तो संक्रमण होता है, हमने देखा ना आवली प्लस एक समय, जघन्य में जघन्य अनुभाग है वहाँ पर, जघन्य अनुभाग संक्रमण।
नहीं, मैं क्या सोच रहा था कि वहाँ पे, अच्छा वहाँ पे तो अभी जगत ठीक है।
तो ये आदेश से हमने हमने विभव पांचवी पुस्तक में से पढ़ रहे अभी हम। अब इसी प्रकार जहाँ जहाँ वह कृतकृत्य होते हैं, पहली पृथ्वी में भी ऐसा ही है,
सामान्य
तिर्यंश, पंचेन्द्रिय तिर्यंश, पंचेन्द्रिय तिर्यंश पर्याप्त, योनिमति को नहीं लिया, सामान्य देव और सौधर्म से लेकर सहस्रार तक के देवों में जानना चाहिए, क्योंकि ये सम्यक मिथ्यात्व की अवक्तव्य बतानी थी, इसलिए वहीं पर रुक गए हैं। और दूसरी से सातवीं पृथ्वी तक के नारकियों में इसी प्रकार जानना चाहिए, ओग के समान जो कहा ना, ओग के समान क्या करना था, भुजगार भी अल्पतर भी, तो भुजगार कहाँ तक होगा, सहस्रार तक होगा, मिथ्यात्व का भुजगार कहाँ तक होगा, सहस्रार, क्यों ऊपर शुक्ल लेशा है तो है, उससे अनुभाग कम बन देगा, और जो है वो भी घटकर वहाँ उत्कृष्ट भी नहीं रहेगा, और अल्पतर तो हो सकता है परंतु अधिक नहीं होगा। और ये जो नीचे के नरकों में क्या होगा, सम्यक प्रकृति का भंग भी सम्यक मिथ्यात्व के समान, यानी क्या उसमें अल्पतर नहीं होगा, अवस्थित होगा, अवक्तव्य होगा। अवक्तव्य कैसा होगा, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का अवक्तव्य कब होगा,
26
की सत्ता वाला, जब उसकी नई सत्ता बनेगी और सम्यक के दूसरे समय से संक्रमण शुरू करेगा तब होगा। यहाँ विभक्ति की अपेक्षा सत्ता में आया तो विभक्ति शुरू हो गई,
या आवली में प्रविष्ट हुआ जीव जब प्रथम ऑप्शन सम्यक को प्राप्त करेगा तो
हाँ, संक्रमण की अपेक्षा हम लेते हैं, वो संक्रमण की अपेक्षा, और यहाँ तो अभी हम विभक्ति की बात करते हैं। देखिए और कुछ खास नहीं है इसमें,
यही है।
हाँ देखो देखो, इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ, 100 पेज पर आए अपने पुस्तक में, नौवें पुस्तक में। अब भुजगार में सभी अनुयोग द्वार चले गए है ना, ये भुजगार के हमने कौन से देखे, समुत्कीर्तना और स्वामित्व। समुत्कीर्तना नहीं कहते हुए भी वो तो समझ लेना, समुत्कीर्तना व्याख्यानाचार्य ने उसको बताया था। फिर स्वामित्व हमने देखा था कौन है करके, यानी अभी तक तो दो ही अनुयोग द्वारा,
ये तीसरा हो जाएगा।
अब तीसरा भुजगार का तीसरा, एक तो एय जीवेन कालो, अब आगे एक जीव की अपेक्षा काल को कहते हैं। देखो तो इससे अपनी क्लैरिटी बढ़ती चली जाती है, भुजगार होता है तो लगातार भुजगार 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 होना चाहिए, अकेले एक बार उत्कृष्ट हुआ और उत्कृष्ट चलता रहा उसको तो हम अवस्थित कहेंगे, यहाँ जितना पहले समय में कुछ बढ़ा है दूसरे समय में भी बढ़ना चाहिए, तीसरे समय में भी बढ़ना चाहिए, उसको भुजगार कहेंगे, और अल्पतर भी प्रत्येक समय में घटता चला जाए तो अल्पतर कहेंगे। इस अपेक्षा एक जीव की अपेक्षा भी काल हम यहाँ देखने जा रहे हैं। अब आगे एक जीव की अपेक्षा काल को कहते हैं, एत्तो अर्थात स्वामित्व का कथन करने के बाद आगे एक जीव की अपेक्षा काल का व्याख्यान करना चाहिए, वो व्याख्यान हुआ, व्याख्यान करना चाहिए क्योंकि यह उसके अनंतर कथन करने योग्य है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अब एक एक प्रकृति पर बताएंगे। मिच्छत्तस्य भुजगार संकामो केवचिरम कालादो होदी। मिथ्यात्व के भुजगार संक्रामक का कितना काल है, यह सूत्र सुगम है क्योंकि यह तो मात्र प्रश्न पूछा है, वो तो समझ में आ गया इसका। जघन्येन एये समो, जघन्य काल एक समय है। क्योंकि जो जीव अधस्तन अनुभाग संक्रम से बंधकी अनुभाग वृद्धिवश, क्या कहना चाहते हैं, पूर्व अवस्था में उसका अनुभाग संक्रम कम था, अब उसने अधिक बांधा तो अनुभाग बंधवश, अनुभाग का बंध हुआ, वो अधिक हुआ है। एक समय तक भुजगार पद का संक्रामक होकर एक समय के लिए उसने उत्कृष्ट बांधा, आवली के पश्चात एक समय के लिए उसका बढ़कर हुआ, दूसरे समय में अवस्थित संक्रम रूप परिणत हो जाता है। बांधा और उतना का उतना बांधना बांधने लगा, या एक समय के लिए भी बांध लिया है उसने, तो उसकी सत्ता में जितना कुछ बन गया है
बढ़ोतरी हुई,
तो वो एक आवली के बाद उसका उतना संक्रमण चल रहा है, तो अंतर्मूर्त उसका अवस्थित रहेगा मान ले, तो उसका एक समय घटित होगा क्योंकि एक समय के लिए भुजगार हुआ फिर अवस्थित हुआ, ये जघन्य एक समय घटित हुआ। तो उसके मिथ्यात्व के भुजगार संक्रम का जघन्य काल एक समय उपलब्ध होगा। अभी उत्कृष्ट की बात करेंगे। उपकस्येन अंतोमूर्तम, उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। विवक्षित अनुभाग स्थान का बंध करने वाला जीव उससे अनंत गुणी वृद्धि रूप से वृद्धि को प्राप्त होकर, ये वृद्धि बराबर करना, पुनः दूसरे समय में भी अनंत गुणी वृद्धि रूप से परिणत हुआ। इस प्रकार अनंत गुणी वृद्धि रूप से तब तक बंध परिणाम को प्राप्त हुआ जब जाकर अंतर्मूर्त का अंतिम समय प्राप्त होता है। अने अंतर्मूर्त तक प्रति समय अनंत गुणी अनंत गुणी अनंत गुणी वृद्धि को उसने प्राप्त किया है। इस प्रकार अंतर्मूर्त काल तक भुजगार बंध संभव होने से भुजगार संक्रम का भी उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त प्रमाण है, इसमें संदेह नहीं। क्योंकि बंधावली के व्यतीत होने के बाद ही क्रम से संक्रम पर्याय रूप परिणाम देखा जाता है। ये बात ख्याल में आई, बंध लगातार अंतर्मूर्त हुआ तो आवली के पश्चात हर एक अपने अपने आवली के पश्चात यानी उसका संक्रमण भी लगातार आवली सॉरी अंतर्मूर्त तक भुजगार रूप से रहा क्योंकि उसने उत्कृष्ट यानी अधिक अधिक बांधा, उत्कृष्ट नहीं कहेंगे उसको, पूर्व जितना अनुभाग था उसे अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना प्रति समय अनंत गुना बढ़कर बांधा। अपयर संकामो केवचिरम कालादो होई, अल्पतर संक्रामक का कितना काल है, यह सूत्र सुगम है। तो कहते हैं जघन्य उपकस्येन एय समो, जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। देखो बढ़कर तो प्रति समय अनंत गुणा वाला बढ़ता है, परंतु घटते समय कांडक घातवश वो तो एक समय के लिए घटेगा। मिथ्यात्व की बात चल रही है यहाँ पर। यथा कोई जीव अनुभाग कांडक घातवश एक समय के लिए अल्पतर पद का संक्रामक हुआ और दूसरे समय में अवस्थित परिणाम को प्राप्त हुआ, फिर दूसरा कांडक हुआ तो उसके भी अंतिम फाली जब होगी तो उसका फिर अल्पतर होगा, फिर अवस्थित रहेगा। कांडक भी लगातार होते रहे, हर कांडक के अंतिम समय में उसका घटेगा, तब तक उतना का उतना रहेगा। इस प्रकार मिथ्यात्व के अल्पतर पद का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय प्राप्त हुआ। जैसे सम्यक्त्व में देखा हमने प्रति समय अनुभाग घटता है, वैसे यहाँ पर क्यों नहीं कहा
या तो लास्ट कांडक कभी हो जाता है तो अवली में प्रविष्ट हो जाता है, तो संक्रमण रुक जाता है, बराबर ना।
देखो यहाँ ये तो किसके होता है, मिथ्या दृष्टि को भी होता है,
सम्यक दृष्टि को,
और जगन्य कब होता है,
सपक सपना,
मिथ्या तो में तो सूक्ष्म निगोध में होता है। हाँ तो समुत्पत्ति को वाले के, परंतु यहाँ अल्पतर में जगन्य ही होना चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, कहीं भी उसका जो पूर्व अवस्था से जगन्य हुआ है यानी कल कम हुआ है, जगन्य नहीं कहेंगे उसको, अल्पतर कहेंगे, पहले जितना था उससे कम हुआ है, तो ऐसा कम हुआ है कब होता है, तो कंडकों में। जैसे सम्यक प्रकृति में प्रति समय घटना होता है, वैसे यहाँ कहीं नहीं होगा, वो प्रति समय घटने की बात या सूक्ष्म लोभ में होगी या फिर सम्यक प्रकृति में होगी, वो जब होगी तो वो आगे कहेंगे उसका काल। यहाँ मिथ्यात्व का चल रहा है, तो मिथ्यात्व का जो अल्पतर है वो एक समय के लिए ही होगा और कांडक के अंतिम समय में होगा। स्थिति विभक्ति से और इसमें डिफरेंस है, स्थिति में क्या है, जब जब बंध कम हो रहा है तो उदय रूप एक एक निशे खिरता है, तो स्थिति वैसे भी अल्पतर होती ही चली जाती है। अब आगे बढ़ेंगे, इसलिए क्या कहा था ना, मिथ्या तो के अल्पतर पद का जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय होता, एक ही समय, इसलिए उसी को जगन्य कहा, उसी को उत्कृष्ट कहा। अब अवट्ठित संकामो केवचिरम कालादो होई, अवस्थित अधस्थित हुआ है, अवस्थित संक्रामक का मिथ्या तो प्रकृति की बात चल रही है, तो अवस्थित संक्रामक का कितना काल है, यह सूत्र सुगम है। जहन्य न ये समो, जघन्य काल एक समय है, यथा एक समय तक एक बाहर की आवाज आते हैं, बोला नहीं जाता, एक समय तक भुजगार बंधरूप परिणमन करके दूसरे समय में उतना ही बंध करके तीसरे समय में फिर भी बंध की वृद्धि रूप से परिणत होकर, बंध की हानि रूप से नहीं कहा, क्योंकि कम बंध अनुभाग अगर कम भी बंधेगा तो जो सत्ता में पड़ा है उसका संक्रमण तो चल ही रहा है, इसलिए कम बंध होने से कोई डिफरेंस नहीं होने वाला, परंतु अधिक बंध होता है, एक समय के लिए बढ़कर बंधा, फिर अवस्थित रहा, फिर बढ़कर बंधा, तो एक समय के डिफरेंस से बन सकता है, तो जगन्य अवस्थित वाला एक समय का होगा। यहाँ लिखा है ना, एक समय तक भुजगार बंध रूप परिणमन करके दूसरे समय में उतना ही बंध करके, और इसके आवली बाद उसका उतना ही संक्रमण भी होगा, तीसरे समय में फिर भी बंध की वृद्धि रूप से परिणत होकर बंधावली के बाद उसी परिपाटी से संक्रामक हो गया, यानी उसी ऑर्डर में, इस प्रकार प्रकृत जघन्य काल प्राप्त हुआ। अब अवस्थित का बता रहे हैं, उपकस से न बेचाहिए हुआ, तेवट्ठी सागरों सदम सादिरेयम, नहीं 63 है ना, तेवट्ठी बराबर है, तेवट्ठी सागरों सदम सादिरेयम, फुल स्टॉप देना यहाँ पर। उत्कृष्ट काल साधिक 163 सागर है, तेवट्ठी 63, किसकी बात चल रही है,
मिथ्यात्व,
मिथ्यात्व का अनुभाग अवस्थित रहे उसकी बात चल रही है, यानी लगातार इतने काल तक सम्यक दृष्टि रहा, मिथ्यात्व का अनुभाग घटेगा कि नहीं घटेगा, बोलो घटना चाहिए ना, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है। स्थिति तो लगातार घट रही है, क्योंकि अल्पतर इतने काल तक अल्पतर कहा हमने स्थिति विभक्ति में, क्योंकि लगातार एक 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 समय से एक एक निषेक घट रहा है, परंतु अनुभाग उतना का उतना रहेगा यदि वहाँ कोई संयोजना विसंयोजना का कार्य नहीं होगा,
विशेष कार्य नहीं होगा,
विशेष कार्य नहीं होगा तो उतना का उतना अनुभाग रहेगा। ख्याल में आई बात? देखो हर एक के लिए रूल अलग है। स्थिति विभक्ति में अलग था, प्रकृति विभक्ति में, संक्रमण में, अभी विभक्ति नहीं संक्रमण में बात अलग थी।
अनुभव
देखो हम यहाँ पढ़ेंगे तो कहते हैं उत्कृष्ट काल साधिक 163 सागर है। यथा एक मिथ्यादृष्टि जीव उपशम सम्यक्त को प्राप्त कर परिणामवश मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, वहाँ मिथ्यात्व के तत्प्रायोग्य अनुत्कृष्ट अनुभाग का बंध कर अंतर्मूर्त काल तक तिर्यंचों और मनुष्यों में अवस्थित पद का संक्रामक होकर फिर पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण आयु वाले भोग भूमिजों में उत्पन्न हुआ। खास स्पेशली पल्ले का असंख्यातवे भाग प्रमाण आयु ली। पहले क्या किया उसने, अनुत्कृष्ट अनुभाग बांधा, जितना है उससे कम बांधा, तो अंतर्मूर्त तक तो उतना का उतना उसका अवस्थित
हो रहा है,
और फिर वहाँ मनुष्य भोग भूमि में उत्पन्न हुआ, वहाँ अवस्थित पद का संक्रम करता हुआ अपनी आयु में अंतर्मूर्त काल शेष रहने पर तथा वेदक सम्यक्त को प्राप्त हो देवों में उत्पन्न हुआ। वेदक सम्यक को इसलिए कि वहाँ कुछ कांडक घात नहीं कराने,
अभी भी दो कारण परिणाम तो होते हैं।
जगन्य भोग भी में ही लिया उन्होंने, नहीं कहीं पर भी, हाँ जगन्य भोग में, क्योंकि दूसरे मध्यम में तो पल्ले प्लस एक समय हो जाएगा। हाँ पल्ले का असंख्या तो भाग इसलिए लिया है कि पहले की उद्वेलना नहीं, यानी उसमें मिथ्यात्व है वापस, क्योंकि उसको हमें फिर वेदक सम्यक को प्राप्त कराना था, इसलिए पल्ले का असंख्या तो भाग लिया। अधिक लंबा काल रहता तो 26 प्रकृति की सत्ता वाला हो जाता, उसके वेदक योग्य काल चल रहा है इतना देना था। वेदक सम्यक को प्राप्त होकर देवों में उत्पन्न हुआ, अनंतर प्रथम 66 सागर काल तक उसका पालन करके अंतर्मूर्त काल शेष रहने पर सम्यक मिथ्यात्व को या अवस्थित संक्रम में विरोध न आवे इस प्रकार मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। इसके बाद फिर भी अंतर्मूर्त काल में वेदक सम्यक्त को प्राप्त करके दूसरे 66 सागर काल तक अवस्थित संक्रम का पालन कर उसके अंत में प्रकृत स्वामित्व के अविरोध रूप से मिथ्यात्व को त्व करना प्राप्त कर इकतीस सागर की आयु वाले देवों में उत्पन्न हुआ, यानी वहां भी अवस्थित रहा, क्योंकि 266 सागर हुए हैं, मिथ्या तो में गया और फिर भी वो अवस्थित ही रहे इस प्रकार
काल तक।
फिर देव में उत्पन्न ग्रहवेक में है, 31 सागर की आयु वाले देव में उत्पन्न हुआ, अनंतर वहां से निकलकर मनुष्यों में उत्पन्न हुआ तथा जब तक संकलेश को नहीं प्राप्त हुआ तब तक अवस्थित संक्रम रूप से अवस्थित रहा। अनंतर संकलेशवश भुजगार बंद करके बंधावली के व्यतीत होने पर उसका संक्रामक हो गया। इस प्रकार दो अंतर्मूर्त और पल्ले के असंख्यात वा भाग अधिक 163 सागर प्रमाण प्रकृत उत्कृष्ट काल प्राप्त हुआ।
क्या ये जो पल्ले का असंख्य तो आप आक्रमण जो झगड़े भूमि में रहा तभी सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व में तो अनुभव की कटौती नहीं होती है पर मिथ्यात्व में भी नहीं होती है।
हाँ मिथ्यात्व में भी नहीं होती है ना भोग भूमि में होगी ना ही देवों में होगी। मिथ्यात्व की बात चल तभी तो 31 अवस्थित रहता है तब तक 31 सागर वाले देवों में भी और वो भोग भूमि में भी क्योंकि वो तो मिथ्यात्व में वहाँ गया है।
नहीं देव में तो समझ में आ गया कि वहाँ पे समय तो प्राप्त किया है और पीछे क्रिया
ना 31 सागर लास्ट में वहाँ कहाँ समय तो है दो शासक सागर हाँ। होने के बाद फिर समय दृष्टि नहीं रखा उसको
नहीं वहाँ पे तो शुक्ल लेकर की अपेक्षा समझ लेते पर यहाँ पे जगन्य भूमि में इतने पल्ले के असंख्यात भाग काल तक
उसका अल्पतर है अवस्थित मुझे कहना अवस्थित है वहाँ
तो अनुभाग में कुछ कटौती
कटौती नहीं होती और वहाँ भी लास्ट में जो समय को प्राप्त किया तो वेदक समय को प्राप्त किया कांडक बिना अल्पतर किसके लिए उसमें हो सकते हैं लगातार अल्पतर की कहाँ बात हो सकने की बात हो सकता है नहीं वहाँ मिथ्यात्व से समय को प्राप्त कर सकता है उपशमित समय को इसलिए कहा ऊपर के सारे समय दृष्टि है ना ग्रेवे के ऊपर समय दृष्टि है। देखो आपको जो पढ़ा था ये याद है ना हमने वो पांचवी पुस्तक से पढ़ा था नहीं उनको अभी हमने जो पढ़ा था ना देवों में जो पढ़ा था उसकी बात उनको याद आ रही है आदेश में
मार्क्यों में पढ़ा था ना हाँ। नहीं देवों में
ऐसा ही पहली पृथ्वी से लेकर सहस्रार तक के देवों में 275 पेज में लिखा था क्या पढ़ा था कि 27 प्रकृतियों का भंग ओघ के समान है। ओघ में क्या लिखा था कि बढ़कर किसको होता है मिथ्या दृष्टि को होता है तो बढ़कर बांधने वाले कौन है सहस्रार तक के वहां तक ही उसको सीमित रखना यानी पूरा कथन जिसमें घटित होता है इसलिए वो सहस्रार तक को दिया था। ये भुजगार के लिए वो सहस्रार की लिमिट बताई
ये सहस्त्र में भी मध्य शुक्ल एशिया वाले परिणाम वाले तो होते शुक्ल एशिया के उत्कृष्ट परिणाम नहीं होंगे पर मध्यम वाले होंगे पर उसकी अपेक्षा बात नहीं है वहाँ पे जो पद्मल एशिया में
वहाँ मिथ्या दृष्टि है कि नहीं है वो बात
नहीं सहस्त्र की बात कर रही
सहस्रार में एक भी जीव के होगा तो कहेंगे ना सहस्रार तक होता है
पद्मल एशिया में बढ़ोतरी होती है
अभी हम यहाँ पढ़ेंगे 163 सागर की बात हो गई अब आगे सम्मतस्य अप्ययर संकामो केवचिरम कालादो होदी पहले में मिथ्या दृष्टि हो या समय दृष्टि हो उसका अवस्थित रहता ये देखा था उसका अल्पतर किसके होता है तो दर्शन होने के क्षपक को होता है। अब ये लगातार अल्पतर कितने काल तक होगा ये पूछ रहे हैं तो कहते हैं यह सूत्र सुगम है जहन्य न ये समो जघन्य काल एक समय है क्योंकि दर्शन मोह की क्षपणा द्वारा एक अनुभाग कांडक का पतन करके शेष अनुभाग का संक्रमण करने वाले जीव के प्रथम समय में जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। यानी पहले अधिक अनुभाग संक्रमण था जब कांडक समाप्त हुआ तो एक झटके से कम हुआ ना उसका फिर दूसरा कांडक शुरू हुआ तो पहले समय में उसका घट गया अल्पतर हुआ तो उसका समय एक फिर अवस्थित रहा कांडक पूरा होने तक। अब कहते उपकस है ना अंतोमोत्तम या वो ऊपर फ्लावर नहीं बनाया वो चूर्णी सूत्र के लिए वो चिन्ह है ना उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है, क्योंकि सम्यक्त के 8 वर्ष प्रमाण स्थिति सत्कर्म से लेकर जब तक दर्शन मौखिक क्षपणा में एक समय अधिक एक आवली काल शेष रहता है, तब तक प्रत्येक समय में अनुभाग की अपवर्तना करने वाला जीव 8 वर्ष से लेकर
ये तो अंतर्मुहूर्त ही लेना चाहिए ना,
8 वर्ष से लेकर लिया है, क्योंकि पहले अंतर्मुहूर्त तो उसने जो मिथ्यात्व की क्षपणा शुरू की थी तब से उसके अनुभाग कांडक हो रहे थे। यहाँ भी अनुभाग कांडक तो है ही है, फिर भी प्रति समय भी घटता होगा उसके साथ साथ। खास लिखा ना 8 वर्ष प्रमाण स्थिति सत्कर्म से लेकर कब तक होगा संक्रमण, एक समय अधिक एक अवधि काल शेष रहे तब तक प्रत्येक समय में अनुभाग की अपवर्तना करने वाला जीव अंतर्मूर्त काल तक अल्पतर पद का संक्रामक होता है। ये सारा उसका अंतर्मूर्त में बन जाता है, क्योंकि वहां पर प्रत्येक समय में अनंत गुणहानि रूप से सम्यक्त्व के अनुभाग का हीयमान क्रम से संक्रमण देखा जाता है। हीयमान जैसे वर्धमान शब्द है, वैसे जो हर समय लगातार घटता हुआ उसको हीयमान कहेंगे। सम्यक्त्व में इसलिए कि उस समय सम्यक मिथ्यात्व का सत्व नष्ट हो जाता है और 8 वर्ष प्रमाण सम्यक प्रकृति रह जाती है। वो तो पुरुष वेद के इसलिए कि उसका नवक बंध 8 वर्ष का है, पुरुष वेद का नवक समय प्रबद्ध जो है वो नवक बंध हुआ था, वहाँ स्थिति कितनी पड़ी तो 8 वर्ष की पड़ी। यहाँ कुछ अलग बात है, यहाँ एक एक प्रकृति नष्ट हो गई है, सम्यक प्रकृति की भी स्थिति कांडक होते होते कितनी बची है 8 वर्ष प्रमाण। ये उसका जो अधिक स्थिति हो गई उसका भी अपना कांडक हुआ है और सम्यक मिथ्या तो भी उसमें स्टर्न हुआ है, ये सब मिलकर अभी 8 वर्ष रहा। उसके आगे भले उसके कांडक भी हो गए परंतु प्रति समय उसका अनुभव घट रहा है। अवस्थित संक्रामक केवल चिरम कालादो होई, अवस्थित संक्रामक का कितना काल है यह सूत्र सुगम है। जघन्य काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि द्विचरम अनुभाग कांडक का घात करके तदनंतर समय में अल्पतर पद से परिणत होकर पुनः अंतिम अनुभाग कांडक का जितना उत्कीर्ण करने का काल है यह सभी अवस्थित संक्रामक का जघन्य काल है। क्या कहना चाहते हैं?
ये जघन्य में जघन्य अंतर्मूर्त है ना,
जघन्य में जघन्य अंतर्मूर्त कौन सा है?
विचरण का
तो हर एक कांडक के लिए काल भी अलग अलग लगेगा, तो यह अंतिम अनुभाग कांडक है उसका जो अंतर्मूर्त काल है उसको यहाँ लिया है। तो उसमें भी उसके पहले समय में तो अल्पतर हुआ था, फिर लगातार उतना का उतना रहा, भले कांडक घात हो रहा है परंतु सत्ता का अनुभाग तो घटा नहीं है, अंतिम फाली में घटेगा। तब तक क्या उतना का उतना अनुभाग रहा, उसमें से अपकर्षण हो रहा है, संक्रमण यानी अपकर्षण यानी संक्रमण तो हो रहा है, फिर भी वो नष्ट नहीं हुआ है स्पर्धक, अनुभाग तो उतना का उतना बना रहा है जब तक फाली का अंतिम समय नहीं गिरता। जहां प्रति समय अनुभाग का घटना होता है वहां ये कंडीशन नहीं रहती, यहां जहां जहां कांडक रूप से घटता है तो कांडक के अंतिम समय में घटेगा, कांडक होते समय अंतर्मूर्त से उतना का उतना रहेगा। पहले कांडक को क्यों नहीं लिया, अंतिम कांडक को क्यों लिया, उसका काल छोटा है। द्विचरम नहीं लिया,
द्विचरम से
द्विचरम में वो कम द्विचरम कांडक का पतन हुआ तब यहाँ पहले समय में अनुभाग संक्रमण कम हुआ, अल्पतर हुआ, कभी अंतिम कांडक के पहले समय में अल्पतर हुआ, क्योंकि वो घटेगा तभी अल्पतर कहेंगे ना, वहां तो वो नष्ट हुआ, तब तक तो उतना का उतना था, वो निकल गया। अभी जो नया होगा संक्रमण, अभी जो नया संक्रमण है वो अल्पतर हुआ, फिर दूसरे समय से उतने का उतना रहा। अंतिम स्थिति अनुभाग कांड किस लिए लिया, कि उसका काल छोटा है। पहले पहले अनुभाग कांडकों का जो उत्कीर्ण काल है वो बड़ा है, ये छोटा है। अब अवस्थित रहने का उत्कृष्ट काल, उक्कस्य न वे छावट्ठी सागरोमाणी साधिरेयानी। उत्कृष्ट काल साधिक 266 सागर प्रमाण है। यथा, ये किसकी बात चल रही है, कौन सी प्रकृति की, सम्यक प्रकृति। ये तब तक लगातार उत्कृष्ट का उत्कृष्ट ही रहा, उसमें जघन्य या अनुत्कृष्ट कब होगा, जब क्षपणा शुरू करेगा तब। उसने क्षपणा की ही नहीं तो कितने काल तक रहा वो, उतना का उतना। भले मिथ्यात्व में चला गया तो भी उतना ही का उतना ही रहेगा। तो एक बार वो समय को प्राप्त करना, फिर पल्ले के असंख्या के बाद फिर समय को प्राप्त करना, फिर सब इस तरह से हम साधिक 266 सागर लेकर। यथा कोई एक अनादि मिथ्या दृष्टि जीव प्रथम सम्यक्त को उत्पन्न कर दूसरे समय में अवक्तव्य पद का संक्रामक हुआ, या उपक्रमिक सम्यक्त प्राप्त किया अनादि वाले ने किसे, पुनः तृतीय आदि समयों में अवस्थित संक्रम को करता हुआ, क्योंकि अभी उसका सम्यक्त प्रकृति का अनुभाग उत्कृष्ट ही है थ्रू आउट। उपशम सम्यक्त के काल का क्षय होने से मिथ्यात्व में गया और पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण काल तक उद्वेलना रूप परिणाम से परिणत हुआ। यहाँ उद्वेलना चल रही उसकी, फिर भी सम्यक प्रकृति का अनुभाग कैसा है, उतना का उतना है। फिर अंतिम उद्वेलना फाली के साथ उपशम सम्यक्त को प्राप्त हुआ, उसी के साथ ही प्राप्त हुआ। यानी सम्यक्त को प्राप्त करता है तब तक उसका संक्रमण अंतिम फाली रूप से है, अन्यथा हम उपशम सम्यक्त प्राप्त करते तो एक समय के लिए संक्रमण नहीं होता, यहाँ वो नहीं लेना है। ख्याल में आया कुछ डिफरेंस नहीं आया? देख, हमेशा हम उपशम सम्यक्त प्राप्त कराते हैं तो क्या कहते हैं, पहले समय में नहीं दूसरे समय में संक्रमण शुरू होता है। अब वैसे बीच में गैप रखेंगे तो अवस्थित वाला लगातार कैसे घटित होगा,
अंतर हो जाएगा।
तो क्या करना, अंतिम फाली के साथ साथ सम्यक्त को उत्पन्न कराना। अंतिम फाली रूप संक्रमण चल रहा है, नहीं वहां भी संक्रमण है और उसी समय सम्यक्त प्राप्त किया है, तो जो नया अभी सम्यक सम्यक मिथ्यात्व तो बना है वो दूसरे समय से संक्रमित होगा। पहले समय में क्या हो रहा है, पूर्व की फाली खिल रही है तो वहां भी संक्रमण था, और दूसरे समय में जो नया अभी बना है उसका संक्रमण शुरू हुआ। यानी बीच में रुकावट नहीं है, गैप नहीं है, बिना गैप का उसका संक्रमण चलता रहा। ख्याल में ना, पहले पल्ले के असंख्यात भाग तक उद्वेलना करता रहा, उद्वेलना के अंतिम कांडक के उसी समय उसने करण लब्धि में मांडी है साथ साथ। यानी यहाँ उद्वेलना कांडक चल रहा है और वहां करण लब्धि में, तो उपशम सम्यक्त का पहला समय और ये अंतिम कांड का अंतिम फाली का समय एक ही है। यानी उस समय अंतिम फाली रूप से संक्रमण कर रहा है और दूसरे समय में वो प्रथम उपशम सम्यक्त में जो निषेध है उसके अनुभाग शुरू हो गए हैं, उसका संक्रमण शुरू हो गया। इसलिए देखा ना, अंतिम उद्वेलना फाली के साथ उपशम सम्यक्त को प्राप्त हुआ, पुनः वेदक सम्यक्त के साथ प्रथम 66 सागर प्रमाण काल को बिताकर उसके अंत में मिथ्यात्व में जाकर पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण काल तक अवस्थित संक्रम के साथ रहा तथा पहले के समान सम्यक्त को प्राप्त कर, वहां भी अंतिम फाली के साथ सम्यक्त प्राप्त, यहाँ उपशम सम्यक्त नहीं प्राप्त कराना है, वेदक सम्यक्त प्राप्त कर। तो ये अंतिम फाली तक नहीं रुक सकते, वेदक योग्य काल में वेदक सम्यक्त प्राप्त किया, दूसरे 66 सागर तक काल तक सम्यक्त्व का पालन करके उसके अंत में मिथ्यात्व में जाकर उद्वेलना की अंतिम फाली के पतन तक अवस्थित संक्रम के अंत को प्राप्त हुआ। यानी फिर मिथ्यात्व में जाकर उसने उद्वेलना की अंतिम फाली जब फिरेगी तब संक्रमण रुक जाएगा। इस प्रकार इस विधि से प्रकृत उत्कृष्ट काल तीन बार पल्ले के असंख्यातवे भागों से अधिक दो छासर सागर काल प्रमाण प्राप्त हुआ। ये क्या रहा थ्रू आउट इसके अवस्थित रहा, समय प्रकृति का अवस्थित रहा। अवत्तव संकामो के वचिरम कालादो होए, अवक्तव्य संक्रामक का कितना काल है, ये नहीं था और बन गया तो एक ही समय घटित होगा उसका। यह सूत्र सुगम है। जघन्य उपकस्य ये समो, जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है क्योंकि संक्रम रहित अवस्था से संक्रम भाव को प्राप्त हुए जीव के प्रथम समय में ही अवक्तव्य संक्रम की प्राप्ति का नियम है। यह ऊपर गया उसकी मात्रा नहीं है, तय करना उसको। अब ये सम्यक्त्व की बात बताए। सम्मामिच्छत्तस्य अपयर अवत्तव संकामो केवचिरम कालादो होई, वहीं पर उसका उत्तर दिया है जहन्न उपकस्य ने ये समय। सम्यक मिथ्यात्व के अल्पतर और अवक्तव्य संक्रामक का कितना काल है, जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अवक्तव्य कब होगा, वही उपशम समय तो प्राप्त होकर दूसरे समय, और अल्पतर कब होगा उसका, कांडक में होगा, अनुभव कांडक, दर्शन मौखिक
सपना में।
परंतु जैसे सम्यक प्रकृति में लगातार एक अंतर्मूर्त बताया है वैसे यहाँ नहीं होगा, यहाँ मात्र कांडक के अंतिम समय में ही होगा।
यहाँ अंतिम कांडक हो जाएगा और पीछे आउली में
प्रवेश। कांडक के अंतिम समय में नहीं कहेंगे हम उसको, कांडक के अंतिम समय तक तो उतना उतना रहा।
हाँ।
और जब नेक्स्ट कांडक शुरू हुआ तो उसका अल्पतर। आपका दूसरा कोई प्रश्न था?
नहीं, अंतिम कांडक हो गया और आवली में, आवली माइनस एक समय में प्रविष्ट हो गया तो संक्रमण रुक गया है।
हाँ, उसके आवली में प्रवेश होने पर संक्रमण रुक जाता। आवली प्लस एक समय में संक्रमण,
आवली माइनस एक समय उसके निषेक,
उसके निषेक आवली माइनस एक समय है, परंतु
समय
स्थिति कितनी रही काल की अपेक्षा आवली का मान। तो सम्यक्त्व के अल्पतर और अवक्तव्य संक्रामक का कितना काल है, जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है।
सम्यक मिथ्यात्व,
सम्यक मिथ्यात्व का इसके अवक्तव्य संक्रामक के एक समय काल का कथन सम्यक्त्व के समान ही करना चाहिए। सम्यक्त्व के समान का अर्थ क्या है, कांडक, कांडक घात के द्वारा होता है। तथा अल्पतर संक्रामक का भी एक समय काल दर्शन मुखी क्षपणा में अनुभाग कांडक घात के अनंतर एक समय तक संभव है, घात के बाद वाला समय लेना वहां पर, ऐसा जान लेना चाहिए। अवस्थित संक्रामकों के विचिरम कालादो होई, अवस्थित संक्रामक का कितना काल है, यह सूत्र सुगम है। तो कहते जहन्येन अंतो मुहूर्तम, जघन्य काल अंतर्मूर्त है क्योंकि अंतिम अनुभाग कांडक के उत्कीर्ण काल के भीतर यह काल उपलब्ध होता है। जैसे हमने देखा था अभी, जब अंतिम अनुभाग कांडक होता है उसका जो उत्कीर्ण काल है
मिनिमम का,
वो छोटा में छोटा अंतर्मूर्त है। उसके पहले अनुभाग कांडक हुए थे परंतु वो बड़ा काल होगा और ये सबसे छोटा काल है। अब यही सम्यक मिथ्यात्व का जो उत्कृष्ट जो है अवस्थित का उत्कृष्ट काल, उपकस्य न वे छावर्ती सागरों माने साधे रियाने, उत्कृष्टता साधिक दो शास्त्र सागर प्रमाण है। इस सूत्र की अर्थ प्ररूपणा सुगम है क्योंकि सम्यक्त्व के समान इसके अवस्थित पद के साधिक दो शास्त्र सागर प्रमाण काल की सिद्धि होने से कोई रुकावट नहीं आती। ये बात ख्याल में आई? यानी उसका अवस्थित कब होगा?
सम्यक तिथ्यत्व का जब लास्ट कांड होगा,
लास्ट कांड घात का
तभी वो सम्यक्त्व प्राप्त करेगा वापस। यहाँ पे वेदक करवाना पड़ेगा।
क्यों?
क्योंकि उसके पश्चात तो सम्यक्त्व का तो कांड घात चलेगा ना, वो जो नाम है
उत्कृष्ट काल दो शास्त्र सागर प्रमाण जो है अभी हमने बीच बीच में देखा ना, जैसे सम्यक्त्व में घटित किया था पल्ले के असंख्यात भाग, फिर छात्र सागर, फिर पल्ले का असंख्यात भाग, फिर छात्र सागर,
तो लास्ट पल्ले का असंख्या,
फिर पल्ले का असंख्य,
वहाँ पे हमने उपशम सम्यक्त्व प्राप्त करवाया था। यहाँ पे हम लोग को वेदक ही करवाना पड़ेगा क्योंकि वापस उज्ज्वला तो सम्यक्त्व की चलेगी ना, तो वेदक ही होगा। पहले सम्यक दिखा तो का उज्ज्वला कांड खत्म हो जाएगा, पल्ले का संख्या तो अब उसका छोटा है और सम्यक्त्व का बड़ा है ना।
पहले सम्यक्त्व की उज्ज्वला समाप्त होती है।
अच्छा, वो तो उसका छोटा हो जाएगा, सॉरी
वो साधिक में आ गया, छोटा बड़ा उसमें यहाँ कंसिडर नहीं किया, उसके समान है। इतनी बात बता दी, कथन तो वही होगा ना, पल्ले का असंख्या तो अभाव।
हाँ।
वो छोटा बड़ा है वो तो अल्पभूत में कहेंगे, काल के अल्पभूत। हाँ। में उसकी बात यहाँ नहीं हो रही। पहले उद्वेलना में, पहले सम्यक्त्व की उद्वेलना समाप्त होती है, पल्ले का असंख्या तो अभाव में समाप्त हुई। अब सम्यक मिथ्या तो है सत्ता में, और कितने काल चलेगा अकेला पल्ले, वो भी पल्ले का
असंख्या सम्यक मिथ्यात्व का बड़ा है।
सम्यक मिथ्यात्व का काल और आगे चलता है ना।
हाँ।
इसलिए वो काल बड़ा है, यानी दोनों में, अगर उस दोनों काल में अल्प बहुतो बताएंगे तो वो प्रश्न। हाँ। आता है कथन जो है, जिसको हम कहें ना
पल्ले का,
क्या कथन, तो दोनों में वही होगा कथन।
तीन बार पल्ले का
साधिक छात्र सागर, दो छात्र सागर, साधिक दो छात्र सागर,
साधिक
में तीन बार पल्ले का असंख्या तो। अब ये पल्ले का असंख्या तो भाग की वैल्यू इसमें बड़ी होगी, परंतु वो विषय यहाँ, यहाँ तो सामान्य से कथन क्या करेंगे। साधिक दो छात्र सागर, साधिक का तो प्रमाण हमने जान लिया है। शेषाणम कम्माणम भुजगारम जहन्नेन ये समो, शेष कर्मों के भुजगार संक्रामक का जघन्य काल एक समय है। अभी भुजगार की बात पहले उठाई, यह सूत्र सुगम है और उपकस्थेन अंतोमोत्तम, उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है क्योंकि अनंत गुणवृद्धि का उत्कृष्ट काल तत्प्रमाण है, ऐसा आगम का उपदेश है। यानी लगातार वृद्धि 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 होते रहेगी तो अंतर्मूर्त तक होती है। अपयर संक्रामो केवचिरम कालादो होई, अल्पतर संक्रामक का कितना काल है, यह सूत्र सुगम है। उपकस्थेन अंतोमोत्तम, और यहाँ जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय। शेषाणम कम्माणम उपकस्थेन अंतोमोत्तम, वो उत्कृष्ट अंतर्मूर्त है। अपर जहन्न उपकस्थेन ये समो, नीचे वाला मैं बीच वाला पढ़ रही थी, जहन्न उपकस्थेन ये समो, जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। यानी इसका जब जब अल्पतर होगा कांडक के स्वरूप में, तब उसका एक समय घटित होगा। यह सूत्र भी सुगम है, यह सामान्य निर्देश है, इससे पुरुषवेद और चार संज्वलनों के भी अल्पतर संक्रामक का उत्कृष्ट काल एक समय प्राप्त होने पर उसके निवारण द्वारा उस विषय में विशेष कथन करने के लिए आगे के दो सूत्र कहते हैं। नवरी पुरुष वेदस्य उपकस्थेन दो आवलियाओ समूनाओ, इतनी विशेषता है पुरुष वेद का उत्कृष्ट काल एक समय कम दो आवली है। किसका उत्कृष्ट काल?
पुरुष का, अल्पतर का,
अल्पतर का।
या दो समय कम दो आवली लेना चाहिए कि एक समय
एक समय कम दो समय कम दो आवली तो उसके उसकी स्थिति तब तक वो विद्यमान है, परंतु उसका संक्रमण कब शुरू हुआ? जो अंतिम समय में बंधा है,
नौ समय का बच्चा, हाँ,
अंतिम समय में बंधा हुआ, उसके पूर्व पूर्व के उसके एक एक फाली
एक फाली जाती जाएगी, तो एक फाली
तो जो अंतिम समय में बंधा है तो बीच में आवली प्रमाण काल चला जाएगा, उसके बाद उसका बंधावली के बाद संक्रमण होगा। ख्याल में आती बात?
नहीं सर, दो समय कम दो आवली पहले उसका लास्ट
उसका अंतिम वहाँ विद्यमानता है।
हाँ।
तो यहाँ क्या कह रहे हैं, वो दो समय कम दो आवली में पहला एक समय कम एक आवली वो जिस समय बंधा है उसके बाद वाली आवली उसमें इंक्लूड करना, बंध के समय से लेकर हाँ। इंक्लूड करना और आगे वाली
आवली माइनस एक समय।
हाँ, तो एक समय में विद्यमानता है, आवली में वो पूरा हो जाता है, आवली में सत्ता नहीं रहती। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, देखो पुरुष वेद का उत्कृष्ट काल किसका? अल्पतर का। एक समय कम दो आवली है, क्योंकि पुरुष वेद के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए जीव के सवेद भाग के अंतिम समय में अंतिम समय से लेकर एक समय कम दो आवली प्रमाण काल तक पुरुष वेद के अनुभाग का प्रत्येक समय में, यह प्रत्येक समय की बात है, अनंत गुणी हानि रूप से संक्रम देखा जाता है। यहाँ क्या कहना चाहते हैं, वो अंतिम समय में बंधा हुआ आवली के बाद होगा, पर उसके एक समय पूर्व बंधा हुआ वो एक समय पहले, यानी अपगत वेद होने के पश्चात प्रति समय अनंत गुणा हानि हो रही है उसकी।
अल्पतर तो एक समय पहले से चालू हो गया, हाँ, जो लास्ट समय में बंधा तभी भी अल्पतर हो गया।
हाँ, वहाँ भी अल्पतर चल रहा हाँ, है,
इसीलिए एक समय कम दो आवली लिया वहाँ पे हमने।
अंतिम तो नष्ट होने वाला है, अंतिम जो है ना,
हाँ,
अंतिम जो है अल्पतर हो गया है,
हाँ,
अभी नेक्स्ट समय तो नष्ट होने वाला है, नष्ट होने वाला है ना वहां पर, उसकी बात कर रहे हो। देखो सवेद भाग के अंतिम समय से लेकर लिया, वो अंतिम समय में उन्होंने अल्पतर में ले लिया,
हाँ, वो अल्पतर में, इसीलिए एक समय कम
उसका एक समय वहां पर भी ले लिया। चदुन्नम संजलनानम उपकसेन अंतोमूर्तम, चार संजलनों का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि क्षपक श्रेणी में कृष्टि वेदक के प्रथम समय से लेकर चार संजलनों के अनुभाग का प्रत्येक समय में अपवर्तनाघात देखा जाता है।
अपना अपना उदय में लेना पड़ेगा ना,
अपना अपना उदय में लेना। देखो पहले में पहले उन्होंने कृष्टियां बनाई थी, अब कृष्टि का वेदन चलेगा नवे गुणस्थान में, लास्ट में उसे संग्रह कृष्टि बनाता है, फिर एक एक कृष्टि का वेदन चलता है, तो एक कृष्टि से दूसरी कृष्टि में अनंत गुना का डिफरेंस, और वहाँ और भी उसका अनुभव घट ही रहा है, तो वो घटकर ही उदय की बात नहीं, सत्ता में पड़ा हुआ भी अनुभाग प्रति समय घट रहा है। ते अवस्थितम जघन्य ने यह समूह, अवस्थित संक्रामक का जघन्य काल एक समय है, और उपकसेन तेवट्ठी सागरोम सदम सादिरेयम, उत्कृष्ट काल साधिक 163 सागर है। हाँ, संज्वलनों का, चार संज्वलनों का लिया। अब अवत्तव जहन्न उपकसेन ये समूह, अवक्तव्य संक्रामक का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। यह सूत्र सुगम है। इस प्रकार ओघ प्ररूपणा समाप्त हुई। आदेश से मनुष्यत्रिक में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है। इतनी विशेषता है कि 12 कषाय और 9 कषायों के अवक्तव्य संक्रामक का भंग ओघ के समान है। हमने देखा ना उपशम श्रेणी उतरते समय होगा। शेष मार्गणाओं में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है। विशेषण अनुभाग विभक्ति में भ करना हुआ। अनुभाग विभक्ति में न तो ओग से 12 कषाय और 9 कषायों का अवक्तव्य पद की अपेक्षा काल का निर्देश किया है और न मनुष्यत्रिक में ही इनके अवक्तव्य पद के काल का निर्देश किया है। क्यों नहीं किया? हाँ प्रतिभा है, क्या कहना चाहते हैं? अनुभाग विभक्ति में इनका अवक्तव्य पद ही नहीं बतलाया। क्यों नहीं बतलाया? सत्ता तो है ना, वहां तो सत्ता की बात थी और यहाँ तो संक्रमण की बात है। उपशमना होती है तो संक्रमण रुक गया है, सत्ता तो बनी है, तो अनुभाग विभक्ति में तो सत्ता बताने वाले थे और यहाँ संक्रमण, इसलिए वहां तो कोई वो तो अवक्तव्य तो है ही नहीं उसमें तो, क्योंकि इनका अभाव होने के बाद पुनः इनका सत्व संभव नहीं है। अनुभाग विभक्ति में जब तक सत्व है तो उसका हम कहेंगे उसका तो है ही है, और सत्व कब नष्ट हो जाएगा? क्षपणा में, उसके बाद फिर उसका सत्व नहीं होगा, इसलिए वहां तो हम उसका जघन्य उत्कृष्ट कार्य कुछ भी अवक्तव्य है ही नहीं है ऐसा कहेंगे। वहां संक्रमण में है क्योंकि असंक्रामक हुआ था, अब संक्रामक हो गया, इसलिए वहां इनका अवक्तव्य पद नहीं बन सकता। परंतु अनुभाग संक्रम की दृष्टि से, अभी यह संक्रम की बात है, इनका ओग से अवक्तव्य पद बन जाता है, तदनुसार मनुष्य त्रिक में तो वह संभव है ही, क्योंकि उसी में उपशम श्रेणी होती है और ओग में तो मरकर देव में भी जा सकता है। यही कारण है कि यहाँ पर मनुष्य त्रिक में इनके अवक्तव्य पद का काल अलग से कहा है, शेष कथन स्पष्ट ही है। देखो थोड़ा फिर देख लेते हैं, भुजगार की बात चल रही थी, भुजगार में काल की बात हो रही थी। 100 पेज से फिर देख लेते हैं, यहाँ एक जीव की अपेक्षा काल, भुजगार का काल चलेगा। भुजगार का काल यानी भुजगार अवस्थित अल्पतर जो कुछ है उसका काल बताएंगे। तो मिथ्या तो मैं भुजगार का जघन्य काल एक समय बताया और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त बताया, क्योंकि अंतर्मूर्त लगातार अनंत गुणा बढ़ता हुआ बंद हो सकता है। अल्पतर का कितना होता है? तो जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय होता है और वो भी कांड घट के समय होता है। अवस्थित का कितना काल है? जघन्य एक समय और लगातार 163 सागर में साधिक। सम्यक प्रकृति का अभी बता रहे हैं, सम्यक प्रकृति का अल्पतर कब होगा पहले ये देखेंगे, तो क्षपणा में होगा, तो कम से कम एक समय तक होगा जब उसका कांडक होता है, और बाद में अंतर्मूर्त है जब 8 वर्ष प्रमाण उसकी स्थिति बाकी रहती है और अंतर्मूर्त तक लगातार उसका अनुसमय अपवर्तन होगा या अपवर्तनाघात होगा। अब सम्यक्त्व में ही अवस्थित संक्रामक कितना काल है? तो जघन्य में जघन्य एक अंतर्मूर्त है, वो कब? अंतिम अनुभाग कांड का जितना काल है उतना, और अधिक से अधिक साधिक 263 सागर,
163 सागर,
सॉरी नहीं नहीं 163 वो मिथ्यात्व के लिए लिया, यहाँ 263 सागर में साधिक वो पल्ले का असंख्यात भाग अधिक लेना। अवक्तव्य का तो एक समय ही घटित होता है कहीं भी, सम्यक मिथ्यात्व में अभी देखना है। ये सम्यक और सम्यक मिथ्या तो में भुजगार किसके होगा? हाँ होगा ही नहीं, क्योंकि जब से तैयार होता है तो उत्कृष्ट ही रहता है, भुजगार होता ही नहीं उसका। हाँ क्या कहते
होता अवक्त भी हो जाएगा ना,
खाई नहीं तो अवक्त भी कहीं है, बड़ा कहाँ, जो था जो है वो उत्कृष्ट ही तैयार हुआ उसका, उसको अवक्त भी कहते, था नहीं और हुआ तो उसको अवक्त भी कहेंगे, जब थोड़ा था और अधिक हुआ तो हम उसको बढ़ गए ऐसा कहेंगे, तो उसमें तो भुजगार होता ही नहीं ना सम्यक में ना सम्यक मिथ्या, तो होगा तो अवस्थित होगा, होगा तो अल्पतर होगा, अवक्तव्य होगा, तीन हो गए उसमें। ये स्थिति में हमने सब देखे थे, दस के दस पद देखे। तो सम्यक मिथ्यात्व के अल्पतर और अवक्तव्य, अवक्तव्य तो एक समय के लिए होता है,
अल्पतर
और अल्पतर कब होगा? कांडधार
कांड
के
एक समय, समय तो अंतर
एक समय होगा,
नहीं अंतर्मूर्त तो वहाँ पे नहीं होगा, सम्यक मिथ्यात्व
सम्यक मिथ्यात्व में अंतर्मूर्त तो नहीं होता, एक समय ही बताया है। अवस्थित का कितना काल होगा?
अधिक दो चार छह साल,
वो तो अधिक से अधिक, कम से कम
अंतर्मूर्त अनुभाग कांड,
अनुभाग कांड अंतिम अनुभाग कांड का उत्कीर्ण काल, और उत्कृष्ट काल जो हमने सम्यक के समान दो छह से सागर। अन्य जो कर्म है उनमें भुजगार का जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त, जैसे हमने मिथ्या तो में देखा था वैसे लगातार अंतर्मूर्त तक उत्कृष्ट बंद यानी बढ़ता हुआ बंद हुआ, अल्पतर का जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय, क्योंकि अन्य कर्मों में जो होता है
कांडक
तो कांडक के समय होता है। अब जो उससे जो कुछ खास कर्म है उसमें कुछ बात अलग थी, जघन्य में तो सर्वत्र एक समय लिया, परंतु उत्कृष्ट में जो वेरिएशन है, पुरुष वेद के लिए उत्कृष्ट काल किसका? अल्पतर का उत्कृष्ट काल
एक समय कम दो
अवधि, क्योंकि जब अंतिम बंद हो रहा था उस समय भी उसका अल्पतर चालू हो गया, उसको ले लेना, चार संजोलन का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त लेना, क्योंकि पुष्टि वेदक के पहले समय से लेकर उनका अपवर्तनाघात होता है, उनका अवस्थित का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक 163 है, अवक्तव्य का तो हमेशा एक समय होता है। यहां तक हमने काल देखा, अब अंतर देखा, इसलिए काल को फिर रिवाइज किया। तो ये जीवेन अंतरम जो है ना, जैसे हम कहेंगे तो अवस्थित का काल है लगातार, तो भुजगार का अल्पतर का अंतर कह सकते हैं हम, इसलिए पहले काल बताया अभी अंतर बता रहे। तो ये जीवेन अंतरम, आगे एक जीव की अपेक्षा अंतर को कहते हैं, अधिकार की संभाल करने वाला यह सूत्र सुगम है। मिच्छत्तस्य भुजगार संकामयंतरम केव चिरम कालादो होई, एक जीव की अपेक्षा बात चल रही है यहाँ पर, मिथ्यात्व के भुजगार संक्रामक का अंतरकाल कितना है यह सूत्र सुगम है। जगन्य अंतर एक समय है यथा, क्योंकि हमने देखा था ना भुजगार किया एक समय के लिए अवस्थित रहा फिर बढ़ाकर बांधा तो फिर भुजगार हुआ। यथा भुजगार पद का संक्रम करने वाला जीव अवस्थित पद द्वारा उसका एक समय के लिए अंतर करके फिर दूसरे समय में भुजगार पद का संक्रामक हो गया, इस प्रकार मिथ्यात्व के भुजगार संक्रामक का जघन्य अंतर एक समय उपलब्ध होता है। और उपकस्यन तेवट्ठी सागरों में सदम सादिरेयम, उत्कृष्ट अंतर साधिक 163 सागर है। यथा, क्योंकि हमने देखा ना उतने काल तक ये अवस्थित रहा, भुजगार उसने किया नहीं,
अंतर हो गया।
यथा भुजगार पद का संक्रम करने वाला जीव अवस्थित पद को प्राप्त कर तथा तीयंच और मनुष्यों में अंतर्मूर्त काल गमा कर तीन पल्ले की आयु वालों में उत्पन्न हुआ। पहले तीन पल्ले की आयु में दिखाए और अपनी स्थिति का पालन कर जीवन में थोड़ा काल शेष रहने पर उपशम सम्यक्त को ग्रहण कर अनंतर वेदक सम्यक्त को प्राप्त कर पहले और दूसरे छासर सागर काल तक परिभ्रमण कर और उसके अंतर में आगम में जैसी विधि बतलाई है उसके अनुसार मिथ्यात्व को प्राप्त कर 31 सागर की आयु वाले देवों में उत्पन्न हुआ। अभी जो कुछ द्रव्यलिंग धारण किया, जो कुछ है वो सब उसमें आ गया। अनंतर वहां से च्युत होकर और मनुष्यों में उत्पन्न होकर अंतर्मूर्त के द्वारा संकलेश को पूरे तौर से प्राप्त करके भुजगार पद का संक्रामक हो गया। यानी तब तक उसने भुजगार किया नहीं, क्योंकि भुजगार कब होगा, जब अधिक बंध करेगा तब, बीच में उसको अवस्थित रूप से ही रखा है। यहाँ उपशम सम्यक तो क्यों प्राप्त किया लिखा है, तो उसमें होगा तो घटेगा परंतु भुजगार नहीं होगा, इसलिए उसको उपशम सम्यक तो को लिया। हाँ, क्योंकि यहाँ काल और बढ़ाया, वहां तो हमको वेदक सम्यक तो प्राप्त कराना था। समझ में आई बात? वेदक सम्यक तो पल्ले के असंख्यात भाग से उसने काल में तो उद्वेलना पूरी हो जाएगी, पूरी उद्वेलना नहीं करानी। अवस्थित है, अवस्थित हो या अल्पतर हो चलेगा, क्योंकि भुजगार का अंतर देख रहे हैं। वहां तो मात्र अवस्थित लगातार रहना चाहिए था, इसलिए यहाँ तो तीन पल्ले वाली बात थी।
को भी लेने की जरूरत नहीं है, सम्यक दृष्टि ने 31 सागर वाली आयु को बंद किया।
सम्यक दृष्टि हो और नवे ग्रहवेग में उत्पन्न हो ऐसा नहीं होगा, मात्र सम्यक दृष्टि को।
तो आयु का बंद भी उसने जब मिथ्यात्व में गया तभी किया।
मिथ्यात्व में बंद हो सकता है उतना? 31 सागर का बंद मिथ्या दृष्टि का नहीं होता है, शुक्ल रेशा है और उसके द्रव्यलिंग का धारण किया हुआ है। देखो हमने पहले क्या देखा था,
यहाँ पे क्या लिखा है, मिथ्यात्व को प्राप्त कर 31 सागर के आयु वाले देव में उत्पन्न हुआ।
हाँ।
तो मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ तभी उसने आयु का बंध किया होगा।
मिथ्वान हुआ है, मिथ्या करना। हाँ। मिथ्यात्व को प्राप्त कर
तभी उसने आयु का बंध किया होगा, तो ही वो ग्रहवेग की आयु का बंध करेगा।
देखो ग्रहवेग की कोई आयु नहीं होती है।
नहीं, ग्रहवेग की आयु नहीं, 31 सागर वाली आयु का बंध।
31 सागर का बंध समय दृष्टि के भी हो सकता है, मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है।
तो सम्यक दृष्टि वो सम्यक के काल में भी उसने वो आयु का बंध,
आयु का बंध कभी होगा उसकी बात ही नहीं है ना, इसलिए आगम के विधि के अनुसार बताया। यानी एक कंडीशन है कि उसकी ने द्रव्य लिंग तो उसके होना ही चाहिए, वो सम्यक तो है कि नहीं वहां पर आयु बंध के काल में, इससे कोई मायना नहीं,
कोई मायना नहीं। अंत में जाके द्रव्य लिंग
होना ही चाहिए तभी तो उसकी, और उसमें जो कंडीशन आवश्यक है उत्कृष्ट सहनन वाले हो वो सब उसमें आ गया, क्योंकि ऑर्डिनरी सहनन वाले वहां नहीं जाए उत्पन्न होते ग्रहवेगों में। ये पंचम काल का कोई मनुष्य नहीं उत्पन्न होगा वहां पर, द्रव्यलिंग हो या भावलिंग हो कुछ भी हो। ये तो नियम तो हमने पहले भी देखे थे बहुत सारे। ये नीचे से तीसरी लाइन में मिथ्या करना, मिथ्या हुआ, मिथ्यात्व को प्राप्त कर। अब ये दो छासर सागर तो समय दृष्टि था कि नहीं, वो और फिर मिथ्यात्व में आया है।
हाँ।
और अंतर्मूर्त में उसने बंद उत्कृष्ट किया नहीं है और 31 सागर में उत्पन्न। हाँ। हुआ। अनंतर वहां से च्युत होकर और मनुष्यों में उत्पन्न होकर अंतर्मूर्त के द्वारा संकलेश को पूरे तौर से प्राप्त करके भुजगार पद का संक्रामक हो गया। इस प्रकार वहां पर यह उत्कृष्ट अंतर, दो अंतर्मूर्त और तीन पल्ले अधिक 163 सागर प्राप्त होता है। वहां पल्ले का संख्या तो अभाग लिया था, यहाँ तीन पल्ले लिया। यही रुकते अभी हम। जावाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो